हरे कृष्ण दिस क्लास ऑन भगवद गीता चैप्टर सेकंड श्लोक नंबर 3 गिवन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ऑन 10th May 2016 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, उसका तीसरे श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो तीसरा श्लोक साथ में दोहराएंगे सभी भक्त। क्लेब्यं मनस्मागमा प्रार्थनाय तत्त्वयुपादते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः कल्प्याम् आस्मागमः प्रार्थना एतत्त्वयि उपाधते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः क्लेब्यं आस्मागमः प्रार्थना एतत्त्वयि उपाधते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। अब इसका अनुवाद साथ में दोहराएंगे। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। इसको सुनिए अभी ध्यान से। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण को घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वे परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। तो प्रथा जो है वो कुंती महारानी का एक नाम है, प्रथा। तो कुंती महारानी जो है वो वसुदेव जी जिनके गर्भ से, जिनके देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो जो देवकी और वसुदेव हैं, तो उनके घर से जन्म लेने के कारण भगवान को देवकी नंदन या फिर वसुदेव नंदन या फिर वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी कहते हैं, है ना। और उनकी जो बहन है उनका नाम था प्रथा। लेकिन ये दोनों के दोनों वासुदेव और प्रथा ये राजा शूरसेन के पुत्र और पुत्री थे। तो राजा शूरसेन और राजा शूरसेन की जो पुत्री थी प्रथा, बचपन में इनके एक सगे संबंधी होते हैं ना, जैसे चाचा ताओ, ऐसे इनके कजिन ब्रदर आए इनके घर पे और कहा तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है और हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, तो तुम अपनी पुत्री हमको दान में दे। तो उनका नाम था राजा कुंती भोज। तो राजा कुंती भोज उन पुत्री को, प्रथा को पसंद करके ले गए और उन्होंने उसका नाम रखा कुंती, कुंती भोज के कारण कुंती। लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्व ज्ञाता है ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं, व्यतिथि में जन्मानी तव च अर्जुना ना तुम वेथा परंतप, हे परंतप मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद है, क्योंकि मैं भगवान हूँ और तुम भगवान नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो एक साल का होता है तो जमीन में घुटनों के बल चलता है, जब बड़ा हो जाता है तो माँ कहती पता है तुम ना ऐसी बेकार की हरकतें करते थे, हाँ खाना गिराते थे, घुटनों के बल चलते थे, पकड़ पकड़ के लाते थे, बार बार कपड़े उतार देते थे, पहनते नहीं थे। बच्चा कहता अच्छा मैं ऐसा करता था, तो फिर बोलते हाँ मुझे तो याद नहीं है, तो माँ कहती है मुझे याद है। तो ऐसे ही पिता जो है सबके परम पिता कृष्ण, हमारे चाहे शरीर बदल रहे हैं, आत्मा देहांतर कर रही है दूसरे शरीरों में, लेकिन कृष्ण जानते हैं हमने पिछले जन्म में क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, और अपने कर्मों के अनुसार हमारा दूसरा शरीर हमें प्राप्त होगा, तब हम क्या करेंगे वो भी उनको सब पता रहता है। बहुनी में व्यतितानी जन्मानी तव च अर्जुना ना तुम वेथा परंतपा, मुझे और तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए लेकिन तुम भूल गए हो लेकिन मुझे याद है। तो इसी तरह से उन्हें पता था कि ये जो कृष्ण की बहन, कृष्ण की जो बुआ है कुंती, उनका पुत्र है अर्जुन है ना, लेकिन उनका एक नाम क्या है प्रथा है ना, इसलिए उनको प्रथा पुत्र कहकर या पार्थ कहकर बुलाया गया। पूरे आप भगवत गीता या महाभारत में अर्जुन को बार बार भगवान कृष्ण पार्थ कहकर पुकारते हैं है ना, तो पार्थ का मतलब यही है कि वो प्रथा के पुत्र हैं पार्थ, और इसीलिए भगवान का एक नाम बन जाता है पार्थ सारथी है ना। तो भगवान जो है उनको बहुत अच्छा लगता है अगर हम उनके भक्तों के साथ उनके संबंध को जोड़ें। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीनो है ना, अहम भक्ता पराधीनो। तो अगर हम भगवान से डायरेक्ट जुड़ना चाहेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण, तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान से जुड़ने का तरीका क्या है, भगवान के भक्त से जुड़ना, जिससे भगवान उस व्यक्ति के ऋणी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान के अनेकों नामों में से भगवान को जो नाम पसंद है वो कौन से नाम है, यशोदा नंदन। तो यशोदा कौन है, भक्त है ना। देवकी नंदन, देवकी कौन है, भक्त है ना। राधा कृष्णा, राधा का नाम पहले आया है ना। राम के साथ में सीता राम, सीता पहले आया। तो जो भक्तों के नाम आने से भगवान जो है ना एकदम से अपना फोकस ध्यान बदल देते हैं आपकी तरफ है ना, इसीलिए भगवान के भक्तों का नाम भगवान से पहले आता है। लेकिन कुछ लोग भगवान को डायरेक्ट मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, तो कृष्णा को डायरेक्ट मिलने से, भगवान को डायरेक्ट मिलने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हम भक्तों को, उन्होंने सुंदर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया महामंत्र दिया है, जिसमें पहले उनकी भक्त सबसे प्रिय भक्त राधा रानी का नाम आता है। क्या नाम है, हरे है ना। हरे का मतलब रंग नहीं है हरा, हरे का मतलब है राधा रानी, जिनका नाम है हरा। और हरा इसलिए कहते हैं क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की हलादनी शक्ति है, उनका नाम है हरा। लेकिन जब उन्हें संबोधन किया जाता है तो वो हरे हो जाती है ना। या फिर भगवान कहते हैं कि राधा रानी जो है वो सबके मन को हर लेती हैं, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है इसलिए उनका नाम हरा है, सबकी तकलीफों को हर लेती हैं इसलिए उनका नाम हरा है, और भगवान भी हर लेते हैं इसलिए उनका नाम हरि है। तो इस तरह से हरा और हरि ये है। तो इनको प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्णा। तो कई लोग प्रश्न पूछते थे कि वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं, दिल्ली में आते हैं तो राधे राधे नहीं कहते हैं, यहाँ हरे कृष्णा कहते हैं या फिर कृष्णा कृष्णा कहते हैं, ऐसा क्यों, तो क्या कहना चाहिए, राधे राधे
राधे राधे
हाँ या फिर हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा में कृष्णा एंड राधा दोनों,
हाँ बिल्कुल,
लेकिन राधा रानी भगवान के हृदय में होती है,
हाँ
राधा रानी के थ्रू जाएंगे तो भगवान
जल्दी सुनते हैं, हरी हरी माता जी भक्त हैं इसलिए जानती हैं ना। तो वही व्यक्ति समझदार है जो क्या कहता है, तो एक बार पूछा गया अगर राधे राधे बोलते हैं तो कौन प्रसन्न होता है, बोले कृष्णा, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कौन प्रसन्न होता है, राधा रानी प्रसन्न होती है। लेकिन अगर हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो कौन प्रसन्न होता है, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर उनको क्या कहा गया है, परंतप
परंतप और साथ में क्या कहा गया है, पृथा के पुत्र प्रतपार्थ। और यहाँ लिखते हैं कृष्ण का साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। तो रक्त संबंध इसीलिए क्योंकि वो रिश्तेदारी में आते हैं, खून का संबंध है उनके साथ में। फिर यहाँ कहते हैं क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वे नाम का क्षत्रिय है। तो अर्जुन जो थे वो काफी सारे लक्षण प्रकट कर रहे थे दुर्बलता के। यहाँ पर एक शब्द आया है हृदय दुर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता के कारण है ना, जिसका डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, दिल पक्का नहीं है, तो वो इसे कहते हैं कि आप है ना ऐसी कमजोर स्थितियों में ना रहो। जैसा कहते हैं हर्ट इज वेरी वीक, इसका हृदय थोड़ा कमजोर है। तो जैसे कभी सर्जरी डिपार्टमेंट में कोई नर्स हो जिसका हृदय दुर्बल हो, हृदय दुर्बल हो, उसको क्या कहा जाता है, आप नहीं आएंगे ड्यूटी में, दूसरे को भेज दो, वरना ये तो एक पेशेंट के साथ एक और पेशेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए हृदय दुर्बल्यम बोला गया क्योंकि अर्जुन यहाँ पर हृदय दुर्बल्यम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो क्या लक्षण है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हृदय दुर्बल्यम के लक्षण है हृदय के अंदर शिथिलता आ जाना। शिथिलता मतलब अगर किसी व्यक्ति का हृदय दुर्बल होगा तो शिथिलता कैसे आएगी, पेड़ के ऊपर सफेद कपड़ा रात को अगर उड़ते हुए देखेगा तो एकदम रुक जाएगा, एक ही जगह पे स्थिर हो जाएगा, स्टिल शिथिल हो जाएगा। उसका कारण यही क्या, वो कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि हो सकता है वो कौन हो, भूत हो। इस घबराहट से अगर वो व्यक्ति रुक गया उसका हृदय कैसा है, दुर्बल है, शिथिलता आ जाना। और फिर दूसरा लक्षण है शिथिलता का मुंह सूख जाना। हृदय दुर्बल जिसका है उसका मुंह सूख जाएगा। तो अर्जुन का मुंह जो है ना वो सूख रहा था। कभी आप देखें जब आप टेंशन में होते हैं तो आदमी कहता है पानी पी लो पानी पी लो, एकदम से हमारे जो बॉडी सिस्टम है वो सारे पानी को खींच लेता है, है ना, घबराहट होती है, तो इसलिए कहते हैं पानी पिलाओ पानी, ऑक्सीजन जाना चाहिए पानी के द्वारा। तो मुंह सूख जाना। फिर शरीर का कांपना, तो शरीर जो है वो कांप रहा था बुरी तरह से अर्जुन का। और साथ में रोमांच मतलब उनके रोंगटे खड़े हो जाना। तो रोंगटे दो प्रकार से खड़े होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक तरीके से खड़े होना और एक होता है भौतिक तरीके से रोंगटे खड़े होना। आध्यात्मिक तरीके से जब खड़े होते हैं जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, और भौतिक तरीके से तब खड़े होते हैं जब व्यक्ति दुखी होता है ना। जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट देख लें कि मर्डर हो रहा है या फिर खून जैसा कोई टेलीविजन में देख लिया, न्यूज देख ली, रोमांचकारी है वो भी लिखते हैं सनसनी खबर, तो उस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ऐसा दृश्य देखा। लेकिन भक्त का रोंगटे उस दृश्य को देख के खड़े नहीं होते हैं। भक्त के कब खड़े होते हैं, जब वो भगवान के साथ अपने अपने संबंध को देखता है और उसमें रस स्वादन करता है, भगवान का भजन करता है, तो कहते हैं रोमांच कंपराशो तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान का कीर्तन करने में, वो सच्चे भक्त हैं भगवान के, है ना, रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा हमारे साथ होता है जब भजन करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, बहुत कम होता है, कभी कभी बीच बीच में सिम्टम आते हैं हल्के हल्के, अभी बैठ जाते हैं दोबारा से क्योंकि हम कंटिन्यूसली भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भौतिक तरीके से और इस तरह से। और शरीर का कांपना, शरीर का कई प्रकार का कांपना होता है। एक कांपना होता है प्रेम के कारण, है ना, जैसे कोई स्त्री या पुरुष आपस में बहुत दिन से एक दूसरे को पसंद करते हो और ऐसा समय आ जाए बस अब ये कहने वाले मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो वो बात बोलने से पहले ही शरीर कांपने लग जाता है, है ना। तो उस प्रकार से भी कांपना होता है कि बस अब हमारा संबंध स्थापित होने वाला है। और एक कांपना होता है डर के मारे, है ना, किसी की गाड़ी से टक्कर हो जाए और वो आदमी हाथ में लाठी निकाले तो आदमी दूसरा वाला ड्राइवर जो होगा अगर कमजोर होगा कांपने लग जाएगा, बस आज तो मेरा सर फूट जाएगा। तो अर्जुन कौन से वाले में कांप रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में बहुत सारी कथाएं सुनाते थे और लिखते थे। जैसा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, एक बार रुक्मणी देवी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, और फिर एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी से एक प्रश्न पूछा। भगवान से रुक्मणी ने क्या प्रश्न पूछा, कहा भगवान आप क्या सबके रक्षक हैं, तो भगवान ने कहा हाँ मैं सबका रक्षक हूँ। कहा भगवान आप झूठ बोलते हैं, आप सबके रक्षक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा रुक्मणी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबका रक्षक नहीं हूँ, मैं तो सबका रक्षक हूँ। अच्छा तो ठीक है आज शाम को आपकी खबर लूंगी, है ना, औरत बोलती है ना हस्बैंड से आज शाम को तुम्हारी खबर लूंगी। तो ऐसे ही रुक्मणी ने अपनी पत्नी भाव में कृष्ण भगवान द्वारकाधीश से कहा शाम को खबर लूंगे। और जब शाम को वो आए तो उन्होंने पूछा, बताइए जनार्दन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, आज आपने सबकी रक्षा करी, सबका पालन पोषण किया, हे पालनहार, आप तो सबका पालन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ, और अपना मुकुट उतार रहे थे, बाजूबंद उतार रहे थे, कड़े उतार रहे थे, और उतारते उतारते रुक्मणी से बातें भी कर रहे थे, और वार्तालाप करते वक्त रुक्मणी से बोले, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रुक्मणी कि मैं जो हूँ सबका पालनहार नहीं हूँ? कहा भगवान, आज सुबह जब मैं आपको तिलक लगा रही थी तो हमारे घर में एक खाली डिब्बी है जिसमें सिंदूर रखा जाता है तिलक लगाने के लिए, कुमकुम लगाने के लिए। उस कुमकुम की डिब्बी को खाली हो गई थी तो उसमें एक चीटी वो मैंने उठा करके डिब्बे में डाल दी थी और बंद कर दिया, और आप तो चले गए अपनी राजसभा में और राजसी वेशभूषा में बैठकर आप वहां सबको निर्णय दे रहे थे, तो फिर आपने उस चीटी का ख्याल तो रखा नहीं। फिर आप कहते हैं सर्व योनेषु कौन्तेय अहम् बीज पदा पिता, सारी जितनी योनियां उन सबका बीज प्रदान करने वाला पिता तो मैं हूं, तो पिता ने अपने पुत्रों का ख्याल नहीं रखा, आज एक चींटी भूखी है सुबह से। तो भगवान हंसने लगे, रुक्मणी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो भूखी है, एक बार जरा तुम उस सिंदूर दानी को खोलकर तो देखो। तो जब उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें क्या था, एक चावल का टुकड़ा था, और चींटी उसको खा रही थी। जब वो खा रही थी तो भगवान हंसने लगे, तो रुक्मणी बोली ये चींटी के पास चावल का दाना आया कहां से? तो भगवान बोले, जब तुम तिलक लगा रही थी ना सुबह, तभी मुझे तुम्हारी मंशा पता थी कि तुम मेरे साथ क्या करने चाह रही हो, क्वेश्चन मेरा टेस्ट लेना चाहती हो। तो तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर अक्षत भी लगाया जाता है ना, तिलक भी के ऊपर चावल के दाने लगाए जाते हैं, तो मैंने वो दाना लेकर उसमें डब्बी में डाल दिया और चींटी सुबह से उसी दाने के ऊपर है। तो हमारे जैसे व्यक्ति, हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है ना बस अगरबत्ती और दिए तक ही सीमित है, वो पालनहार नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान के भजन को त्याग दें, भगवान का भजन साथ साथ में चलना चाहिए। तो भगवान जो है वो पालनहार है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे और उन्होंने कथा में सुना, होए वही जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ाए शाखा। उन्होंने एक भागवत कथा में, राम कथा में सुन लिया, होए वही जो राम रचि राखा, होता वही है जो रामचंद्र जी चाहते हैं, को करे तरक बढ़ाए शाखा, तर्क करने से क्या फायदा। तो जब उन्होंने सुना तो उठ गए राम कथा से, और उठने के बाद में बाहर निकल गए राम कथा के पंडाल से, और घर आके बोलते हैं, देखो इतनी बकवास कथा चल रही है, बोलते हैं होए वही जो राम रच राखा, अगर राम जी नहीं चाहेंगे तो क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? तो आज मैं प्रण लेता हूं कि ये फालतू कथाएं बंद हो जाएं, इस बात को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, अनशन करूंगा। अनशन का मतलब अनशन, शन मतलब बंद। भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं अनशन करना अच्छा है, लेकिन किसके लिए करना चाहिए, भक्ति के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए। लेकिन कई लोग अनशन करते हैं समाज के लिए या किसी सीट को पाने के लिए, वो अनशन आसुरी स्वभाव का होता है, आसुरी मतलब राक्षसी स्वभाव का होता है। तो हमें व्रत करना चाहिए व्रत आदि, लेकिन किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह से उन्होंने भी अनशन किया और कहा आज मैं भोजन नहीं लूंगा, आज मैं बिल्कुल भूखा रहूंगा। और घर वालों ने कहा पिताजी खाइए खाइए, कुछ नहीं रखा, और भगवान राम पे भरोसा रखिए। कह रहे बस मेरे सामने भगवान का नाम मत लेना, आज तो हद ही हो गई, अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं खाना नहीं खा सकता क्या? तो आज मैं दिखाऊंगा कि देखो उसकी इच्छा है कि खाना आए और मेरी इच्छा है मैं नहीं खाऊं, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, और आज मैं भूखा ही रह के दिखाऊंगा। और फिर इस बात को स्थापित करने के लिए अपना घर त्याग करके जंगल चले गए। हाँ, जंगल जाकर बोलते हैं अब इस जंगल में कौन भोजन लेके आएगा, आज तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि भगवान राम जो है पालनहार नहीं है, वो किसी को भोजन प्रदान नहीं कर सकते अगर वो व्यक्ति खुद ना करना चाहे, खुद ना खाना चाहे। तो फिर सोचा कि जंगली जानवर आ जाएंगे जंगल में, तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। अब वृक्ष के ऊपर बैठ गए तो पास वाले गांव में डकैत आ गए, डाकू। जब डाकू आए तो सारे के सारे गांव वाले अपना रोटी सब्जी पूरी जो भी उन्होंने घर में बनाया था वो सब पैक करके भागे कि डाकू जो हैं वो हमसे कुछ छीन न लें। अब डर के कारण सारे के सारे गांव वाले कहाँ गए? जंगल। बोले जब गांव खाली मिलेगा तो डाकू सोचेंगे गांव वाले डर के भाग गए हैं और फिर वो वापस चले जाएंगे। लेकिन एक समझदार डाकुओं के सरदार ने कहा कि मुझे लगता है ये सारे के सारे इस रास्ते गए क्योंकि जमीन पर इनके पैरों के निशान हैं, तो ये लोग इस रास्ते से गए, चलो इनको पकड़ लेते हैं। तो वो पकड़ने के लिए उस रास्ते में चल दिए। अब ये सारे के सारे लोग जो थे थक गए थे भागते भागते, तो इन्होंने सोचा चलो बैठ करके भोग बनाया था खा तो ले, तो उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और प्रसाद खाने लगे। जैसे ही खाया तभी घोड़े के टाप आवाजें आई, लगा डाकू फिर से पीछा करते हुए गांव से कहां गए? जंगल में आ गए। अभी तो ये बहुत ही ज्यादा घबरा गए, इतने ज्यादा घबरा गए कि सब कुछ छोड़ करके, गहने जेवरात खाना पीना सब छोड़ करके भाग गए वहां से। अब जब डाकू वहां आए तो डाकू ने देखा कि सारा खाना लगा हुआ है वहां पर। वो बोले अरे यहाँ कौन रहता है जो कि इतना अच्छा प्रसाद है, खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। तो डाकुओं के कई लोगों ने बोला सरदार सुबह से भूखे पेट घोड़े पे दौड़ा रहे हो, कुछ खिला तो दो, अब अच्छा खासा भोजन छप्पन भोग लगा है खा लेते हैं। तो जब वो खाने के लिए उतरने लगा तो डाकुओं का सरदार बोला रुको, हो सकता है ये पुलिस की चाल हो, गांव वालों ने पुलिस को खबर कर दी हो और पुलिस वालों ने हमें खाने में जहर मिलाकर यहाँ रखा हो। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर ये पुलिस की चाल है तो पुलिस का कोई आदमी यहाँ जरूर होगा हम पे निगरानी रखने के लिए। तो एक आदमी को बोला ढूंढो कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, सब ने इधर उधर पूरी टॉर्च से देखा। तो एक ने देखा वृक्ष के ऊपर कोई बैठा हुआ, कहा सरदार मिल गया पुलिस का आदमी मिल गया, उतारो। नीचे उतारा, बता पुलिस का आदमी है? कह रहे नहीं नहीं भाई पुलिस का आदमी नहीं हूं मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, राम कथा में सुना था राम जो चाहते हैं वही होता है और मैं चाहता हूँ कि आज मैं खाना नहीं खाऊं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों को जो करना है करो मुझे रहने दो। हाँ हर आदमी यही कहता है, हम भी जब पकड़े जाते हैं ना तो हम भी पुलिस को यही कहते हैं हम चोर नहीं है, इसलिए तू हमको ये कह रहा है कि तू पुलिस वाला नहीं है लेकिन खाना तो तुझे खाना पड़ेगा क्योंकि हमें लगी है भूख और यहाँ आसपास कोई जानवर या कुत्ता तो है नहीं कि हम खिलाकर चेक कर लें कि इसमें जहर है कि नहीं, अब हमारे लिए तो पिगी बैंक या फिर तू ही है हमारे पास में, तो है ना, तो हम तेरे ऊपर ही ट्राई करना चाहते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर। तो उस तरह से उन्होंने कहा तुम खाओ, और वो ना 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 करे, मुंह के ऊपर पूरा ऐसे लगा ले, और उन्होंने दो आदमियों ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और मुंह में दूध खीर पूड़ी सब्जी सब डाल दिया। अभी आंखों से रोता जाए, बोले खा भी रहा है रो भी रहा है, क्या हुआ जहर लग रहा है? कह रहे नहीं नहीं जहर नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूँ ओए वही जो राम रचना का होता वही है, ओ रामचंद्र जी किसी को खिलाना चाहते हैं ना तो वो ना चाहते हुए भी खा सकता है और नहीं खिलाना चाहे तो व्यक्ति के सामने छप्पन भोग रखे हो ना उसके हाथ से रोटी छिन जाएगी, कोई ना कोई खा जाएगा लेकिन वो उस दिन भूखा रह जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि हमें भगवान पे निर्भर होना चाहिए। लेकिन अर्जुन इतना सब कुछ जानने के बाद भी, क्षत्रिय होने के बाद भी शिथिल हो रहा था। तो ऐसे ही रुक्मणी जी के साथ भी वही हुआ कि एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को सिर्फ इतना कह दिया, रुक्मणी तुमने ना गलती करी, ऐसे आदमी से विवाह कर लिया जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं है, ऐसे आदमी से शादी कर ली जो काले रंग का है, ऐसे आदमी से शादी कर ली जो तुमको उठा करके लाया है। अभी कोई लड़की को ये बोला जाए तेरा पति काले रंग का है तुझे उठा करके लेके आया है और उसके माँ बाप का भी कोई पता नहीं है और वो कौन है उसका प्रोफेशन भी एकदम नीचे वाला है क्या गाय चराता है, तो व्यक्ति की तो बहुत बेइज्जती जाएगी। कहा रुक्मणी तुमने तो बहुत बड़ी गलती करी। अब रुक्मणी ये प्रश्न सुनकर कांपने लगी। तो हम ये कथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन भी कांप रहे हैं और इधर रुक्मणी भी कांप रही है, लेकिन अर्जुन के कांपने में डर है और रुक्मणी के कांपने में प्रेम है। रुक्मणी कांपती हैं कि अरे आज मेरे वसुदेव कृष्ण द्वारकाधीश कैसी बातें कर रहे हैं, और ये सुनते हुए वो गिर जाती हैं। पता कैसे गिरती हैं? प्रेम पूर्वक जब कोई व्यक्ति गिरेगा तो वो व्यक्ति गिरता है सीधा स्ट्रेट, हाँ, और जब कोई व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर गिरता है तो व्यक्ति गिरता है दुख में। तो अर्जुन जब गिर रहे हैं तो गिरे तो नहीं है वो, लेकिन वो बैठ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हताश होकर तो रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। पहले अध्याय के 40वें श्लोक में आता है कि अर्जुन हताश होकर बैठ रहे हैं रथ के ऊपर, तो पहले वो धनुष को साइड में रखते हैं और एकदम गिरने जैसी स्थिति है, पर गिरे नहीं। लेकिन रुक्मणी थड़ाम पूरा दंड व दंडे के समान जमीन पे गिरती हैं, और जैसी वो गिरती हैं और फिर जब उन्हें होश आता है तो देखती हैं वसुदेव कृष्ण के चार हाथ विष्णु रूप में, दो हाथ से उन्होंने उठा रखा है रुक्मिणी को और एक हाथ से चवर और एक हाथ से मोर पंखा पंखा कर रहे हैं और बोल रहे उठो रुक्मिणी उठो। जब वो उठती हैं तो फिर भगवान उनसे बोलते हैं क्या हुआ रुक्मिणी, कह रहे प्रभु आप भी कैसे प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न से मेरा शरीर कांप उठा, हाँ कि आज मेरे वसुदेव कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने क्या गलत बोला, तो फिर रुक्मिणी उनको कहती हैं हाँ मुझे पता है आपने कोई गलत नहीं बोला। कह रहे बताओ मेरे कोई माँ बाप हैं, कहा जो स्वयं आदि भगवान है उसका कोई माँ बाप हो सकता है। ईश्वरम परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, जो सारे कारणों का कारण है उसका कोई माँ बाप होगा क्या, वो तो मैं माँ बाप की लीला करने के लिए किसी को यशोदा बनाता हूँ किसी को नंद बनाता हूँ, मुझे भी आनंद जब चाहिए होता है तो मैं शिशु रूप में अपने आप को अवतरित करता हूँ, लेकिन असलियत में भगवान का जो रूप है वो 16 वर्ष की युवा अवस्था का रूप है। भगवान एकदम हमेशा नव यौवन रहते हैं 16 साल के, ना वो बूढ़े होते हैं ना वो बच्चे होते हैं, वो जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। 16 साल के दो हाथों वाले, हाथ में बांसुरी लिए सदा गायों के बीच विचरण करने वाले, राधा रानी के साथ संग करके लीला करने वाले भगवान का नाम है गोविंद, वो भगवान है। तो ऐसे भगवान का कोई माँ बाप नहीं है, कहा सही बात है। तो रुक्मिणी बोली ये तो बात है, सच भी आता है भगवान, आपने कुछ गलत नहीं बोला। अच्छा बताओ रुक्मिणी मेरा रंग काला नहीं है, कहा भगवान ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका रंग काला है, जब काले व्यक्ति पर पूरा संसार नौछावर हो गया, अगर गोरे होते तो क्या होता, लोग जी नहीं पाते, इतना आपका सुंदर रूप है कि स्वयं जब द्वारकाधीश ने अपना मुख अपने जमीन पर देखा ना, वैकुंठ की जमीनें कैसी हैं, चिंतामणि रत्न की बनी है चमकते हुए, तो जब उसने अपना फेस देखा तो कहा ओ माय गॉड कितना सुंदर व्यक्ति है, हा? ये भगवान ये कितना सुंदर व्यक्ति, कौन है ये। इस सुंदरता को एहसास करने के लिए उन्होंने इतनी सारी रानियां बनाई 16108 कि ये जब मेरे गुणगान गाएंगी तो फिर मुझे पता चलेगा मेरी सुंदरता के बारे में, और अपने आप को ही राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया ताकि वो रस स्वादन कर सके अपनी सुंदरता का स्वयं। तो ये भगवान की असीम सुंदरता है। कहा अच्छा हुआ कि आप काले हुए, तो इस तरह से, और कहा कि अच्छा बताइए मैं काला हुआ, मेरे माँ बाप नहीं है, और ये बताओ कि मैं तो भगोड़ा भी हूं, मैंने तो रण छोड़कर भाग गया, जरासंध से मैं लड़ाई नहीं कर पाया। कहा भगवान आप तो इतने शक्तिशाली हैं जो 6 दिन की उम्र में पूतना जैसी राक्षसी को मार सकते हैं, 7 दिन की उम्र में आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, आपके लिए जरासंध को मारना कोई बड़ी बात थी, और आपने 17 बार उसे हरा भी दिया, 18वीं बार तो आप ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उसको छोड़ आए, क्योंकि आप कहते हैं नमो ओम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, गायों के हितैषी हैं, गोपाल हैं, इसलिए आपको ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आपने जरासंध को छोड़ दिया, क्योंकि जरासंध ने 18वीं बार 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी और भगवान ने मथुराधीश के रूप में 17 बार उसको चुटकियों में हरा दिया। जितनी सेना महाभारत में है ना, 16 अक्षुणी सेना, जिसमें 11 दुर्योधन के पास और 5 अक्षुणी सेना है अर्जुन के पास, ये 16 अक्षुणी सेना मिलकर के महाभारत का युद्ध हुआ, और अकेले जरासंध के पास 18 अक्षुणी सेना थी और कृष्ण के पास खाली कृष्ण बलराम, ये दोनों लोग जाकर पूरी सेना को हरा के आ जाते थे। 17 बार भगवान आपने हराया और 18वीं बार में भी आप हरा सकते थे, लेकिन जरासंध ने ब्राह्मणों की शरण ली और कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मणों कि इस बार मैं कृष्ण से ना हारूं। तो भगवान ने कहा अगर मैंने इसे हराया तो ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे, तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा चल ठीक है तुझे माफ किया जा बेटा जा, तो उसको छोड़ दिया। और साथ के साथ भगवान को और काम भी करने थे, भगवान को एक राक्षस को मारना था जिसका नाम था मुचुकुंद। मुचुकुंद राजा जो थे वहां पर विश्राम कर रहे थे, सॉरी वहां पर एक राक्षस था जिसका नाम था काल यवन। काल यवन भगवान को गालियां देता था, भगवान का दुश्मन था, कहा भगवान, हाँ भगवान को कहता था ओ अघोरे, ओ नीच, ओ पापी, हाँ ऐसे करके भगवान को पुकारता था। तो भगवान मुस्कुराते रहते थे, कहते थे अगर मैं क्रोध करूं तो मेरा सुदर्शन चक्र तेरी गर्दन काट देगा, लेकिन मैं चाहता हूं तो कुछ दिन और शक्तिशाली बन, ताकि तेरी शक्ति जब असीम होगी ना तब तुझे काटने में मजा आएगा। ऐसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनके पास तो इतना धन नहीं आता जितना भक्ति ना करने वाले करोड़पति बन जाते हैं, तो भगवान उनको शक्तिशाली बनाता है, बन बेटा बन बन, और बनने के बाद में फिर उनको बैंकरप्ट कर देता है। अभी बहुत सारे बिजनेसमैन है, हम नाम नहीं लेंगे सभा में, जिनका अभी 0-0 चल रहा है, बैंकरप्ट, पहले उनको चढ़ाया और अभी एकदम काट डाला पूरा। भगवान रावण को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया और बाद में खुद ही जाके मार दिया। तो भगवान तो ये मजे लेते हैं ना, उनका तो आनंद उनकी लीला है, पहले करोड़पति बनाओ फिर काट दो। इसीलिए भक्तों को वो देते नहीं। धन आने से अहंकार भी साथ में फ्री में आता है। अहंकार का मतलब है अहंकार, मेरी कार, कार ड्राइव करते हैं बड़ी वाली और फिर अहंकार में रहते हैं, अहंकार। तो इस तरह से अहंकार को त्यागना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो काल यवन को मारने के लिए भगवान वहां से चले, और एक राजा थे मुचुकुंद जो देवताओं को बचाने के लिए गए ऊपर स्वर्ग लोक में, और जब कई वर्ष युग बीत गए तो उन्होंने कहा अब मैं वापिस जाना चाहता हूँ पृथ्वी लोक पे। तो देवताओं ने कहा नीचे तो युग बदल गए, यहाँ कुछ घंटे बीते हैं, नीचे तो युग बदल गए, आप जब जाएंगे तो वहां कोई आपके साथ का मिलेगा नहीं आपको, अभी द्वापर युग चल रहा है और आप तो सतयुग में ऊपर आए थे। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा? बोले आप जो चाहते हैं वो बोलिए, हम आपका इच्छा पूरी करेंगे। कहा मुझे निद्रा का वरदान दे दो, मैं सोता रहूं, और ऐसी जगह सुलाओ जहां कोई डिस्टर्ब भी ना करे। आगे एक बोर्ड टांग दूंगा डोंट डिस्टर्ब में, है ना, होता है ना होटल में टांग देते हैं डोंट डिस्टर्ब, या फिर क्लिनिक पे भी लगा होता है डोंट डिस्टर्ब, तो ऐसे डोंट डिस्टर्ब मी का बोर्ड भी टांग दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक गुफा बना दी गुजरात में द्वारका के पास, जिसे कहते हैं आज मुचुकुंद की गुफा, उस गुफा में मुचुकुंद जी को सुला दिया और कहा तब तक सोते रहो जब तक भगवान का दर्शन ना हो आपको। अभी भगवान को मुचुकुंद को भी दर्शन देना था क्योंकि देवताओं ने उन्हें वरदान दिया है, काल यवन को भी मारना था, ब्राह्मणों को भी बचाना था, तो भगवान ने सारी लीला इकट्ठी करी। भगवान भागे और काल यवन को कहा आओ मेरे साथ लड़ाई करो। अब भगवान आगे आगे और उसके पीछे पीछे काल यवन जा रहा था, और जाते जाते मुचुकुंद की गुफा में भगवान घुस गए और अपना पीला पीतांबर उतार के मुचुकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। अब जब काल यवन अंदर आया तो बोला वेरी बैड, बहुत बुरी बात है, मुझे बुला के लाया, भगा दिया पूरा रनवे पे, और आप यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हो, उड़ो। तो उन्होंने उठाकर एक लात मारी। अभी राजा मुचुकुंद को ये वरदान दिया था कि जब आप पहली बार जिस चीज को देखेंगे नींद से उठने के बाद वो राख हो जाएगी। तो अब जैसे ही वो राजा मुचुकुंद उठे तो उन्होंने दृष्टि डाली किसके ऊपर? काल यवन पे, क्योंकि भगवान तो पहले ही छुप गए थे गुफा में जाके, और अपना पीतांबर डाल दिया था मुचुकुंद के ऊपर। अब जब मुचुकुंद राजा उठे और उन्होंने दृष्टिपात किया तो क्या हुआ? काल यवन पूरा हो गया। खूब वो घबरा गए, वो बोले इतना टाइम भी नहीं मिला पूछने का, हुआ रही हूँ उससे पहले ही फिनिश हो गया, कौन था भाई, क्या था, इसकी डिटेल क्या थी, आईडी कार्ड भी नहीं है कुछ इसके पास। तो भगवान कृष्ण वहां आए और कहा देखो राजा मैं तुम्हारे को दर्शन देने आया हूँ, तुमने देवताओं से वरदान मांगा था, लो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, और अगर मैं पहली बार आता तो फिर मुझे भी भस्म होना पड़ता क्योंकि तुम्हारा वरदान मैं खराब नहीं कर सकता था। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी कही हुई वाणी काट सकता हूँ लेकिन भक्त की कही हुई वाणी नहीं काट सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान मैं टलने नहीं देता हूँ, भक्त ने कह दिया तथास्तु ऐसा होगा तो फिर होगा, कृष्ण से मांगोगे ऐसा हो जाए, हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन भक्त ने अगर कह दिया तो फिर होगा। हाँ तो इस तरह से भक्तों की शक्ति भगवान के द्वारा ही दी गई है लेकिन उनकी शक्ति भगवान से भी अत्यधिक होती है। तो इसलिए राजा मुचुकुंद को उन्होंने दर्शन दिया और कहा बोलो राजा आप तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा भगवान मैं ये चाहता हूँ कि अपना शरीर त्यागने के बाद में मैं सदा आपके चरणों का स्मरण करता रहूं, है ना। तो इस तरह से जब रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को प्रश्नों के उत्तर दिए तो द्वारकाधीश हंसने लगे, कहा बहुत सुंदर रुक्मिणी तुम तो बहुत ज्ञानी हो, और फिर दोबारा से अपनी शयन कक्ष में चले गए। तो रुक्मिणी भी कांप रही है लेकिन प्रेम पूर्वक, ज्ञान से सब कुछ जानती है, लेकिन अर्जुन अज्ञानता के कारण कांप रहे हैं। तो हम लोग जब कांपते हैं ना, या तो ठंड से कांपते हैं या फिर अज्ञानता से कांपते हैं, प्रेम से नहीं कांपते हैं, है ना। तो प्रेम से कांपने के लिए हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जब वेद का मतलब है ज्ञान, और जब वेद नहीं है हमारे जीवन में तो वेद ना है, वेद ना, तो वेद ना मतलब दुख। अब वेद होंगे तो दुख नहीं होगा, है ना। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग रोते हैं। अभी पीछे एक भक्त थे, उनके हम घर गए थे, उनकी वाइफ दो दिन तक एक ही स्थान पर अपने पति की डेड बॉडी के साथ बैठी रही और रोई नहीं, क्योंकि वो भक्त थे। और उनका बेटा अमेरिका से दो दिन बाद आया, अभी परसों उनके घर गए थे हम। तो प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त थे, प्रचार करते थे, तो उनकी पत्नी रोई नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो जानती है क्या, तथा ध्येयांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नाम होयति। ये आत्मा एक देह से दूसरे देह में देहांतरित हो रही है, पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर रही है, तो इसमें रोने की क्या बात है। और उस भक्त के लिए कीर्तन प्रार्थना ये सब करना चाहिए, तो वही वो कर रही थी। तो वो रोता नहीं है व्यक्ति, कांपता नहीं है। कांपता तो वो है जिसके पास वेद ना है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण हम कांपते हैं। तो अर्जुन भी अज्ञानता में कांप रहे थे, और वहां पर उनका गांडीव जो है वो छूटा जा रहा था, गांडीव धनुष। भगवान के धनुष का नाम है शारंग, और अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव, और इसीलिए अर्जुन का एक नाम है गांडीवी। गांडीवी भी भगवान के अर्जभक्त जो अर्जुन है उनका एक नाम है गांडीवी। हाँ, तो ऐसे जो गांडीवधारी हैं, कहते हैं अर्जुन के हाथ से धनुष गिर रहा था लेकिन गिरा नहीं था, इसलिए वो लड़ना भी चाह रहा था। लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो द्रोणाचार्य और अपने स्वजनों को देख करके सोच रहा था कि मैं छोड़ दूं लड़ाई को, इसलिए खिसक रहा है। अगर वो पूरी पूरी लड़ाई नहीं करना चाह रहा होता तो वो छूट जाता। तो कहा है उसने अज्ञानता में डरते हुए धनुष बाण को किनारे रख दिया, रखा है, गिरा नहीं है। तो एक एक शब्द जो है गीता का वो शिक्षा प्रदत्त है, शिक्षा प्रदान करता है हमको। तो जो अर्जुन थे, एक बार क्या हुआ कि वो अपने गांडीव पर इतना घमंड हो गया था, इतना घमंड हो गया था उनको, इसीलिए अंत में जब अर्जुन ने अपने शरीर को त्यागना चाहा तो उनको स्वधाम में भगवान नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उनको कहा तुम्हें अपने धनुष से इतना घमंड था, तुम्हें लगता था तुम ही सारे बाण से अपने दुश्मनों की हत्या कर रहे हो, पर सच्चाई ये थी कि मेरा चक्र नहीं होता, मैं नहीं होता तो तुम्हारे धनुष बाण वैसे चलते जैसे दशहरे के मैदान में छोटे छोटे बच्चे नकली धनुष बाण लेकर तीर उछालते हैं, यहाँ से उछाला यहाँ गिर जाता है, और तुम सोचते हो कि मैंने गांडीव से पता नहीं क्या कर लिया। हो सकता है तुम द्रोणाचार्य की सभा में चिड़िया की आंख को भेद सकते हो, तुम द्रौपदी की सभा में मछली की आंख को भेद सकते हो, लेकिन तुम भीष्म पितामह के शरीर में एक तीर भी मार सको ये तुम्हारी शक्ति नहीं थी अर्जुन, भगवान ने कहा। तो भगवान ये जानते थे, लेकिन डायरेक्ट बोल दे तो बुरा लग जाएगा ना, तो इसलिए इनडायरेक्टली भगवान उसको समझा रहे हैं। तो एक बार अर्जुन ने घमंड में आके क्या कह दिया पता है, कहा कि अगर आज मैंने कर्ण को नहीं मारा, आज मैंने अगर कर्ण को नहीं मारा और अगर किसी ने मेरे गांडीव के लिए कुछ भी कहा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। तो इस तरह से बोल करके वो जा रहे थे। अभी कर्ण बार बार उनको क्या बोल रहा था, तेरे गांडीव में दम नहीं, आजा आजा आजा, और ये तीर चला रहे थे। अब दोनों की क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था कर्ण और अर्जुन का, लेकिन समय समाप्त हुआ, शंखनाद हुआ और युद्ध रुक गया। अब युद्ध रुक गया तो दौड़े दौड़े युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भ्रातृश्री आए और कहा अर्जुन तेरे गांडीव में दम नहीं है, कर्ण इतना सामने से आया तू मार नहीं सका, कहा रुक जाओ मत बोलो, आज ही प्रण लिया है जिसने मेरे गांडीव को कहा उसकी गर्दन काट दूंगा, तलवार निकाल ली। अब चाहे कुछ भी हो बार वचन तो पक्का करना पड़ेगा, अब युधिष्ठिर को मारना पड़ेगा। भगवान आए वसुदेव, व्रत पारसारथी थे उनके, सारथी होते उन्होंने कहा किसके लिए तलवार निकाल रहे हो, कहा भगवान आज सुबह मैंने वादा नहीं किया था, वचन लिया था जो मेरे गांडीव के लिए बोलेगा उसकी गर्दन काट दूंगा, युधिष्ठिर की गर्दन काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अगर युधिष्ठिर की गर्दन काट दोगे तो फिर युद्ध कैसे चलेगा, आपस में पांडव भी लड़ने लगेंगे तो ये महाभारत कोई नया दृष्टिकोण ले लेगा, एक नया रास्ता, एक नई पहलू आ जाएगी इसके अंदर। कहा फिर क्या करूं, कहा देखो तुम्हें जब किसी को मारना हो और मारने का पाप भी ना लेना हो तो क्या करना चाहिए? उसकी बुराई करनी चाहिए, उसकी बुराई करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है ना, ये ऐसा है वो ऐसा है, वो समझ लीजिए उसको मारने के बराबर। स्वयं कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं उसकी गर्दन काटने के बराबर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने खूब गालियां दी युधिष्ठिर को, तुम में दिमाग नहीं है, मैं अगर हार गया था तो तुम आ जाते, तुम पीछे पता नहीं क्या करते रहते हो, पता है हरिश्चंद्र बने फिरते हो, पीछे से जाके पकड़ लेते, बहुत कुछ बोला। अब युधिष्ठिर महाराज जो है वो तो सत्यवादी थे और अपशब्द भी नहीं बोलते थे, बेचारे चले गए अपना रथ लेके चुपचाप। लेकिन युधिष्ठिर को बोलने के बाद अर्जुन को बड़ा गिल्टी हुआ, उसने अपने हृदय दुर्बलता के कारण अंदर रोने लगा। वो कहा वासुदेव अब ये तलवार इस गर्दन को काटेगी, मतलब अपनी सुसाइड। कहा क्यों, सुसाइड क्यों करना चाहते हो? कहा देखो युधिष्ठिर महाराज जैसे अच्छे भाई को मैंने उल्टा सीधा बोला, अब मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपनी गर्दन काट दूं। तो उन्होंने कहा अगर तुमने गर्दन काट दी तो फिर युद्ध में कर्ण को कौन मारेगा, क्या कर रहे हो? कहा लेकिन अभी तो मुझे मरना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा इसका भी एक तरीका है, क्या? अपनी तारीफ करो। जब कोई व्यक्ति अपनी तारीफ करता है अपने मुंह से, है ना, बोलते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह से अपनी तारीफ, इसे कहते हैं आत्मश्लाघात का दोष। आत्मश्लाघा, श्लाघात मतलब होता है तारीफ करना। जब कोई आत्मश्लाघात अपनी तारीफ करता है तो एक तरह से वो व्यक्ति आत्महत्या करता है, अपनी सुसाइड करता है। तो दो चीजें इसमें सीखने योग्य हैं, क्या? दूसरी की बुराई करना, उसकी गर्दन काटना, और अपनी तारीफ करना मतलब आत्महत्या करना। तो फिर अर्जुन ने अपनी तारीफ करी, रो भी रहा था और अपनी तारीफ भी कर रहा था, मेरा गांडीव जैसा तो किसी का गांडीव नहीं है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और फिर भगवान हंस रहे थे, देखो बेवकूफ। तो इस तरह से भगवान जो है वो कठपुतलियों की तरह हमें नचाते हैं और हम नाचते रहते हैं। अर्जुन जैसे शक्तिशाली जो हवा को कंट्रोल कर सकते थे, वो भी भगवान की कठपुतली है, भगवान के हाथों से नाच रहे हैं। तो भगवान उन्हें यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे परंतप, शत्रुओं का दमन करने वाले। परंतप का मतलब होता है शत्रुओं का दमन करने वाले। खड़े हो जाओ और इस दुर्बलता को त्याग दो। इतने दुर्बल भी कितने दुर्बल हो तुम कि तीर नहीं चला रहे हो। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्राह्मण को करना चाहिए, और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो क्षत्रिय को करना चाहिए। ठीक है, तो अब समय हो गया है, यही समाप्त करते हैं, वरना हम